ओम शांति। एक सूफी संत के पास कुछ महिलाएं रोज आती है। वो कहती है हमें शिष्य रूप में स्वीकार करो, परंतु वो गुरु नहीं मानता है, उसे शायद उनमें विश्वास नहीं। परंतु जब वो रोज आती है और रोज विनती करती है तो वो कहता है मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा, एक प्रश्न सबसे पूछूंगा, यदि आप उत्तर दे पाई तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। तो पहली स्त्री को बुलाता है और काल्पनिक एक प्रश्न पूछता है कि एक नाव से आप गुजर रहे हो और वो नाव डूब गई और आप एक निर्जन टापू पर पहुंच गए और उस टापू पर 40 खूंखार डाकू है और वो अविवाहित स्त्री है। तो उससे वो पूछता है तुम क्या करोगी। वो कहती है मैं समुद्र की लहरों में समा जाऊंगी, मैं उस टापू पर पैर ही नहीं रखूंगी, मैं स्वयं को समाप्त कर दूंगी, डूब जाऊंगी या खुदकुशी कर लूंगी। वो सूफी संत उसे विदा करता है, तुम जा सकती हो, क्योंकि स्वयं को समाप्त कर देना किसी भी समस्या का हल नहीं। दूसरी स्त्री आती है, वो विवाहित स्त्री है। उससे वो वही प्रश्न करता है कि तुम समुद्र की एक नाव में जा रही हो, तूफान आया, नाव डूब गई, तुम एक निर्जन टापू पर पहुंची जहां पर 40 खूंखार डाकू है, तुम क्या करोगी। वो कहती है उसमें से जो सबसे शक्तिशाली होगा वो मैं उससे शादी कर लूंगी ताकि वो मेरे बाकी 49 से रक्षा करे। सूफी संत उसे भी विदा कर देता है क्योंकि एक 49 से शक्तिशाली नहीं हो सकता। तीसरी स्त्री आती है, वो वेश्या है। उसे पूछते हैं कि तुम नाव में जा रही हो, नाव डूब गई, तुम एक निर्जन टापू पर पहुंच गई, वहां पर 40 खोखार डाकू है, तुम इस समस्या से कैसे बाहर आओगी? वो कहती है, निर्जन टापू है, नाव डूब गई है, 40 खोखार डाकू है, पर समस्या क्या है? उसके लिए कोई समस्या नहीं है। सूफी संत कहता है, तुम भी जा सकती हो। चौथी स्त्री आती है, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्र, तूफान, निर्जन टापू, 40 खूंखार डाकू, तुम क्या करोगी? वो आंख बंद कर लेती है और थोड़ी देर में आंख खोलती है। वो कहती है, मैं निपट अज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, वही तो सीखने आपके पास आई हूं। वो स्वीकार कर ली जाती है। जब आत्मा अपना अज्ञान स्वीकार करती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अब तुम सिखाओ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, क्या करना है क्या नहीं करना है, जब ऐसी बाल सुलभ जिज्ञासा, बाल सुलभ वृत्ति हृदय में है, तब स्वीकार किया जाता है। तो हम सब किसके दरबार में आए हैं? आज कौन सा वार है? सत गुरुवार। बाबा ने आज की मुरली में कहा, इसे गुरुवार नहीं कहा जाएगा, इसे सत गुरुवार कहा जाएगा। और हम सब सतगुरु के पास आए हैं। अज्ञारंदति मिरांदस्य ज्ञानांजन शलकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, मैं किसके, हमारे पास क्या था पहले जीवन में? तिमिर, तमस, अंधकार था। तुमने ज्ञान के चक्षु दिए, तुमने ज्ञानांजन शलकया ज्ञान के अंजन दिया है ज्ञान का, और अब मैं देख पा रहा हूं। पहले तो कुछ भी नहीं पता था। बाबा ने आज कहा है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैंने 12 गुरु किए थे पर कोई एक ने भी मुझे ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान तो तब मिला जब सद्गुरु ने प्रवेश किया, तब साक्षात्कार हुआ और तब ज्ञान मिला, तब तक तो कोई ज्ञान नहीं था। तब उस सद्गुरु ने गीता का ज्ञान दिया, गीता जो माए बाप है, तब ज्ञान प्राप्त हुआ। अब तक कोई ज्ञान नहीं मिला था। तो सद्गुरु अर्थात सद्गुरु, जो गुरु अंधकार का नाश कर दे और सारी भूले, सारी गलतियां, सारा भय कहां पर है? अंधकार में। जितना हम डरते हैं, अंधेरा डराता है। अज्ञारंध तिमिरांधस्य, अज्ञान का अंधेरा है, और जब तक अज्ञान का अंधेरा है तब तक हम डरते रहेंगे। इसके लिए गीत में क्या सुना? शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया मुझे प्यार कितने जहान का, केवल दो। आपने दिया मुझे प्यार दो जहां का, केवल दो जहां का नहीं, सारी दुनिया का प्यार। तीन लोक 14 भुवन कहा जाता है भक्ति मार्ग में, वो सारा प्यार अब प्राप्त हुआ है। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए, अशकों के मोती तेरी याद में बहा है, गुन क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, आपने दिया मुझे प्यार दो जहां का। तो ठहरना, रुकना और याद करना कि उसने क्या क्या मेहरबानी की है, उसने क्या क्या उपकार किए है, क्या क्या दिया है। केवल उसका चिंतन नहीं करना, उसने जो जो नहीं दिया, जो जो नहीं मिला, उसने दिया सब कुछ, इतना दिया, इतना दिया कि आज तक किसी ने नहीं दिया। अपने ही भाग्य का, अपने ही खजानों का, अपनी ही प्राप्तियों का अंतर मन में, हृदय के अंतस में बैठकर एकांत में, मौन में चिंतन करना, हम क्या थे पहले और क्या बन गए। इसलिए आज स्लोगन में क्या कहा बाबा ने, वारे मैं, अपना ही गुणगान गाओ मिया मिठू, अपनी ही तारीफ करो कि वारे मैं, मेरे जैसा तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस संसार के एकदम ऊपर उस सर्वोच्च शिखर पर, इसलिए गुण क्यों ना गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, क्यों ऐसे मेहरबान का मैं गुण क्यों ना गाऊं। निरंतर गुणगान करते रहो, महिमा गाते रहो, अशकों के मोती तेरी याद में बहाए। उसकी याद में कैसे याद करो, रोमांच खड़े हो जाए, कुछ दिन पहले मुरलियों में था, कैसे याद करो, प्रेम के आंसू आ जाए, ऐसे याद करो। दुनिया की प्रीत वो दिल से भुला के, खुश हूं मैं दिल सदगुरु से लगा के, लिख दिया दिल पे नाम मैंने आपका, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहां का, हृदय पर तुम्हारा नाम लिखा है। और दुनिया की प्रीत को भुला दिया है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, संसार कैसा है, विकारी। संसार की आत्माओं का स्पर्श भी कैसा है, विकारी, विकारों की बास है उसमें। तुम कुमारिया, तुम कन्याएं, तुम बच्चियों को वो पसंद नहीं है। हमको हाथ क्यों लगाते हो? गुरु तेरे प्यार ही, तेरा प्यार ही मेरा क्या है, ईमान। उसके सहारे चल रहे मेरे प्राण है, उसका प्यार ही सब कुछ है मेरे लिए। रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, ये अच्छा रिश्ता है शम्मा परवाने का। शम्मा जल रही है, परवाना आता है और क्या हो जाता है, खत्म। तो ये अच्छा रिश्ता है। ये मरना ठीक है या गोल गोल घूमना ठीक है? गोल गोल घूमना विवेकपूर्ण है। या डूबना ठीक है, या मर जाना, मिट जाना, समाप्त तो हो जाना ठीक है। वो गीत है ना, क्षमा कहे परवाने से परे चले जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां ना आए। वो नहीं रुकता उसको जल जाना होता है, वो नहीं रुकता उसको जल जाना होता है। प्यार कैसा होता है, दीवाना होता है। वो रुकता नहीं है कि उसकी उसकी मंजिल ही क्या है, जल जाना, मिट जाना, समाप्त तो हो जाना, इसमें खो जाना। इस क्षमा में आया है शिव समा क्षमा, क्योंकि इसमें समा जाना, मिटना नहीं है, समाप्त तो हो जाना नहीं है, अमर बनना है। क्योंकि यह क्षमा अकाल है, ये कोई अमूर्त है, ये कोई मिटाने वाली नहीं है, समाप्त करने वाली नहीं है। इसमें समा कर ही वास्तविक उसमें आत्मा में निखार आएगा, उस जुगनू में, उस परवाने में। करता था मन तंग शाम सवेरे, अब मैं नहीं वो बस में है मेरे, कर दिया खात्मा उस बेईमान का। किस बेईमान का? मन का, मनोनाश। शास्त्र कहते हैं मनोनाश, मन का नाश हो जाए। जो मन हलचल करते रहता है, भागते रहता है, दौड़ते रहता है, इधर देखता है, उधर देखता है, ये करूं वो करूं, ऐसा मन बेईमान है बड़ा। ऐसे बेईमान मन का क्या कर दिया? खात्मा। दुनिया की प्रीत की ना मुझको जरूरत, मुझे नहीं चाहिए कि कोई प्यार करे, कोई केयर करे, कोई अटेंशन करे, कोई सपोर्ट दे, कोई मदद करे, कोई हेल्प करे, कोई कोऑपरेट सहयोग करे, कोई स्तुति करे, कोई प्रशंसा करे, कोई उधर से सकाश भेजे। हमको सकाश भेजो, घर में ग्रहचारी चल रही है, मधुबन से सकाश भेजो, पावरफुल वाली, अमृत वेले वाली, अच्छी वाली सकाश, ताजा 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 सकाश, टिकाऊ सकाश, सस्ती सादा टिकाऊ सकाश, सकाश एजेंसी। हमको जरूर भेजना सकाश, हमारा योग नहीं लगता, हमको सकाश दो थोड़ी, हमारे इधर थोड़ा सा सकाश तो देनी है, पर मांगना ब्राह्मणों से क्या कहेंगे। दुनिया की प्रीत की ना मुझको जरूरत, मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। यहां का वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब दिखावा है, दंभ है, आडंबर है, यहां का मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में रहे बस तेरी प्यारी सूरत है, लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहां का, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया मुझे प्यार तो जहां का। होठ, इसलिए जब ऐसा सद्गुरु आया है तो संपूर्ण समर्पण, ऐसा सद्गुरु आया है तो सारा मन चित्त बुद्धि उसी में लगाना है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्तम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेंद्र लग्नम। गुरु रंग रिपद में ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। अगर ऐसे सद्गुरु में मन नहीं लगाया तो क्या फायदा, सब कुछ पा लिया सब कुछ मिल गया, पर ऐसे गुरु में मन नहीं लगाया तो क्या फायदा। ततक किम ततक किम ततक किम, सब व्यर्थ है। तो अभी हम देखेंगे आज की मुरली में सद्गुरु के लिए बाबा ने क्या क्या कहा है। सबसे पहली बात, सद्गुरु है संपूर्ण सत्य। सद्गुरु क्या है? संपूर्ण सत्य, उसमें जरा भी असत्य नहीं है। वो जो संसार के गुरु है वो गुरु है, सद्गुरु नहीं है, केवल नाम के गुरु है। जैसे एक बार सुनाया था, एक विदेशी आता है और वो कहता है मुझे यहां का सबसे बड़ा जो गुरु है उससे मिलना। कोई कहते हैं यहां के सबसे बड़े गुरु को जगत गुरु कहा जाता है, और तो ऐसे व्यक्ति का नाम सुनता है जो जगत गुरु है, उसको ढूंढते ढूंढते उसके गांव में पहुंचता है, सोचता है जगत गुरु मतलब बहुत हजार बहुत बड़ा आश्रम और बहुत बड़े शिष्य होंगे। देखता है एक छोटी सी कुटिया है, वो उससे मिलता है, क्या आप ही सदगुरु? वो कहते हैं हाँ। जगत गुरु? वो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं आपके शिष्य? बोलते मेरा एक ही शिष्य है जिसका नाम जगत है और इसलिए मैं जगत गुरु बन गया। तो संसार में गुरु है ही नहीं, सब ढोंगी गुरु है। गुरु तो एक ही है जो निराकार है। तो गुरु अर्थात संपूर्ण सत्य, जिसमें लेश मात्र भी असत्य नहीं, यह है गुरु की परिभाषा आज की मुरली से बाबा ने कहा। तो जब ऐसा संपूर्ण सत्य अवतरित हुआ है धरा पर, और यदि हम असत्य में हैं तो उसको क्या कहेंगे? मूर्खता। यदि हमारा जीवन अब भी असत्य के साथ चल रहा है, और सबसे बड़ा असत्य है मैं देह हूं, सबसे बड़ा झूठ ही यह है कि मैं देह हूं, तो सद्गुरु अर्थात संपूर्ण सत्य। दूसरा, सद्गुरु बड़ा फरमान सुनाते हैं, और सबसे बड़ा फरमान कौन सा है? सबसे बड़ा फरमान मुझे याद करो। फरमान एक है, फरमान एक है, फतवा एक है, सुझाव एक है, ऑर्डिनेंस एक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप तुमको राय देते हैं मुझे याद करो, बाप का ये फरमान है, बाप की ये आज्ञा है, बाप की ये श्रीमत है, बाप का सुझाव, बाप का सजेशन, शिक्षा है, बाप समझाते हैं, बाप कहते हैं, बाप बतलाते हैं, बाप तुमको सावधानी देते हैं, बाप बैठ तुमको समझाते हैं, बाप तुमको क्या इशारा देते हैं? मुझे याद करो। अब ये सब में क्या अंतर है? फरमान थोड़ा कड़ा शब्द है। यज्ञ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ था कि वरदान जो रोज की मुरली में आता है उसको हटा दिया था, और 3 मास के लिए फरमान लिख के आता था। फरमान अर्थात, और फिर आदेश, बाप आदेश देते हैं, बाप आज्ञा देते हैं, बाप हुक्म देते हैं, बाप ऑर्डर करते हैं। ये फरमान थोड़ा कड़ा शब्द है। तो 3 मास में इतने पत्र मधुवन में आ गए, इतने पत्र राजू भाई जी के पास आ गए, ये वरदान ठीक ठाक है, भूल गए तो चलता है, पर फरमान भूले तो डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। फरमान अर्थात फतवा टाइप है वो, जैसे उधर फरमान निकला है, मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते मैं बाद में आता हूं। फतवा निकला आज के आज पहुंचो 5 बजे तक, मतलब आज ही पहुंचना है, ये जैसे वो वारंट टाइप है वो। मिलिट्री वारंट होता है ना, उस टाइप है वो। तो फरमान थोड़ा ऊंचा शब्द है, कड़ा शब्द है। तो बाप का बड़ा फरमान कौन सा है, मुझे याद करो, ये दूसरी बात। तीसरा, निर्विकारी बनो। क्या कहा बाबा ने आज, निर्विकारी बनो, जरा भी अपवित्रता नहीं। और ब्रह्मचर्य और पवित्रता की परिभाषा दी है वरदान में, संबंध संपर्क भी सबसे एक समान हो। कितनी नई बात है, ऐसा नहीं इससे थोड़े ज्यादा अच्छे संबंध है क्योंकि ये मीठा है, ये थोड़ा कड़वा है। मदद मांगते हो तो कभी देता ही नहीं है, जब भी पूछो कुछ उत्तर फिक्स है ना, तो इससे थोड़े से कम। पवित्रता अर्थात अगर ऐसा भी है, बाबा ने कहा सबसे समान संबंध संपर्क, कोई भी अयथार्थ कर्म ना हो। और बोल, बोल के लिए क्या कहा, देखो बोल के लिए क्या कहा, कोई तो शब्द है। तो ये होगी पूज्य आत्मा। तो सद्गुरु अर्थात सद्गुरु क्या बनना सिखाते, अयथार्थ ना हो। सद्गुरु क्या करना सिखाते हमको, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। फिर तीसरा, वो हमें रूहानी ताकत देते हैं। ताकत अर्थात दिए नहीं किसी को भूसा मारा और वो गिर गया, ताकत अर्थात दिए नहीं कोई चींटी मर गई है उसको जिंदा कर देगा, ताकत अर्थात दिए नहीं कि जो हो गया उसको बदल दे। ताकत अर्थात रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो देता है हमको, अलौकिक शक्ति भर देता है आत्मा में, क्योंकि आत्मा निस्तेज हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, शक्तिविहीन स्त्रीविहीन श्रीविहीन हो गई है, ऐसी आत्मा में बल भर देता है। तो वो क्या करता है, हमको रूहानी ताकत देता है। उसके बाद में हमारी दृष्टि को कैसा कर देता है, पांचवा, दृष्टि को कैसा करता है, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। संसार की दृष्टि कैसी है, संसार की आत्माओं की, विकारी दृष्टि है। यहां कन्याओं को याद किया, अकेले आए अकेले जाना है, तो दृष्टि को भी पवित्र कर देता है। फिर वो ज्ञान देता है, गुरु क्या करता है, सत्य ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान जो कोई नहीं दे पाया आज तक। और वही गुरु क्या है, माताश्य पिताश्य, वही मां भी है तो वही पिता भी है, सब कुछ वही है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है, उस से हम है, उस में हम है, उसके लिए हम है। फॉर हिम, इन हिम, फॉर हिम, फ्रॉम हिम, सब कुछ हमारी जो दुनिया है वो उसमें समाई हुई है। इसके लिए दुनिया की मुझे जरूरत नहीं है, दुनिया के प्यार की, उसके प्यार में सब कुछ समाया हुआ है। और सद्गुरु क्या करता है आज की मुरली से, सुशील भाई, पढ़ाता है, क्या करता है, पढ़ाता है, ऐसी पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता। और क्या करता है सद्गुरु, साथ ले जाता है, मुरली से बाहर आ जाओ, सद्गुरु क्या क्या करता है, अंजन देता है। और क्या करता है सद्गुरु, मंत्र देता है। और क्या करता है सद्गुरु, रामायण में दिखाया हुआ है, दशरथ आईने में देख रहा है और अचानक सफेद बाल दिखते हैं, कहते मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा वंश कैसे चलेगा, कोई पुत्र ही नहीं। तब ख्याल आता है कि कुछ तो करना चाहिए, गुरु के पास जाता है और कहता है, यह नहीं कहता है कि मैं पुत्रविहीन हूं मुझे पुत्र दो, ऐसा कोई कुछ मार्ग बताओ, कुछ तो मुझे बताओ, जाई विधि होई नात हित मोरा, जिससे मेरा ही कल्याण हो जाए। बाबा से कभी कुछ मांगना नहीं, उससे कहना ऐसा कुछ करो जिससे मेरा कल्याण हो, ये बदल दो वो बदल दो, डिपार्टमेंट बदल दो, सेंटर बदल दो, या इसको बदल दो, इस इंचार्ज को बदल दो, साथी को बदल दो, ये जो जूनियर से इनको बदल दो। बदलने से कुछ नहीं होता है, हमको ही बदलना है। यहां एक रावण है, दूसरी जगह जाओ वहां 10 बैठे हैं, ये फिर भी परिचित सा रावण है। इसकी आदत हो गई है, वो तो नए जिनका कोई अनुभव नहीं है। तो गुरु क्या करता है, मंत्र देता है। गुरु क्या करता है, आशीर्वाद देता है। गुरु क्या करता है, राय देता है, सजेशन देता है। गुरु क्या करता है, समस्या को सुलझाता है। और गुरु क्या करता है, तिलक दे देता है, बेड़ा पार करता है। और गुरु क्या करता है, वरदान आशीर्वाद। गुरु क्या करता है, कृपा करता है। और जब बार बार महान आत्माओं के दर्शन होते रहे, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, समझ लेना कि परमात्मा कृपा हो रही है। जब बार बार महान आत्माओं का संग मिलता है, उनके वचन सुनने को मिलता है, श्रेष्ठ वचन कानों में पड़ते हैं, तब समझ लेना कि भगवान की कृपा। इसका प्रमाण क्या है कि भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है, यही कृपा है कि महान आत्माओं का संग मिलते जाएगा, तीव्र पुरुषार्थियों का संग मिलते जाएगा। कान जिनके श्रवण समुद्र समान, बड़े हो जाएंगे सागर की तरह ऐसी बातें सुनने के लिए, तब समझना प्रभु की कृपा बरस रही है। और सद्गुरु क्या करता है, सदगति करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। इस आज की मुरली में भी कहा, शांति हमारे गुरु से शांति मिलती है। बाबा ने कहा कोई शांति नहीं मिलती तुम्हारे गुरु से, शांति देने मैं आया हूं, तुम्हारे गुरु से कैसे मिलेगी, खबरदार जो ऐसा कहा तो। शांति है मेरे पास, फिर दूसरे से कैसे मिल सकती है, डुप्लीकेट शांति। तो शांति देता है वो, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। और क्या करता है, सतमार्ग बताता है। जीवन जो भटक गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, टू बी और नॉट टू बी, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इससे मिलूं उससे मिलूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। शेक्सपियर के हेमलेट जैसी सिचुएशन है, त्रिशंकु जैसी सिचुएशन है, बीच में लटका हुआ है। वो महाराष्ट्र में है कुसुमाग्रज, वो कहते हैं जगावा की मरा वहां एक सवाल है, उसके जैसी सिचुएशन है। ये करूं जीव की मरू, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, ऐसी सिचुएशन है। हे करावे की, हे करावे की, हे करावे की, हे करावे की, ते करावे, हे करावे की, ते करावे की, ते करावे की, ते करावे की, ते करावे की, ते, समझ ही नहीं आ रहा है। ये करूं या वो करूं, या वो करूं या वो करूं, या वो करूं या वो करूं, या वो करूं या वो करूं या वो, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, इतना कंफ्यूजन है। ये करावे की, ते 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 करावे की, ते, ऐसा कंफ्यूजन। तो ऐसे जब मूंज जाती है आत्मा, तब सतगुरु प्रवेश करता है और मार्ग बताता है। और क्या करता है सतगुरु, एडॉप्ट करता है, संन्यास कराता है। गुरु के पास आते हैं तो संन्यास्त करता है, मर्जी वा नया जन्म देता है। वो चाणक्य चंद्रगुप्त से क्या कहते हैं, उधर से अपमानित होकर आते हैं, इस ब्राह्मण को शिखा पकड़ के खींच के बाहर फेंक दो, धननंद बाहर फेंक देता है। और फिर प्रतिज्ञा लेता है, जब तक काल सर्पणी बनकर तुम्हारे राज पर नहीं आऊंगा, जब तक जैसे यवनों ने भारत को पदाक्रांत किया, मैं तुमको पदाक्रांत करूंगा, तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। और वो जब बाहर निकलता है, देखता है एक छोटा सा बालक खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ, पर उसमें अलौकिक प्रतिभा है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जैसे वो राजा, खेल चल रहा है, एक राजा बना बैठा है और वो प्रजा है, उसके सामने वो बच्चे खेल रहे, एक को पकड़ के ला रहे। वो कहता है ये हमारे साम्प्रदाय, ये हमारे जनपद का अपराधी नहीं है, दूसरे जनपद का अपराधी है, इसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। छोटा बच्चा कहता है नहीं, सजा सजा है, वो चाहे किसी भी जनपद का हो। तो वो चाणक्य उसको देखता है, उसको पकड़ता है, आज तेरा नया जन्म हुआ, तेरा पुनर्जन्म हुआ। और बस उसको वहीं पर उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देता है। तो गुरु क्या करता है, शिष्य का पुराना सब कुछ खलास समाप्त, संस्कार परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, पुराना नया जन्म देता है उसको। तो भगवान ने भी हमको देख लिया, हम खेल रहे थे, उसको लगा ये है थोड़े मेरे काम के, इनमें कुछ प्रतिभा दिख रही है, हिडन पोटेंशियल, सुप्त शक्तियां इनमें है। उसकी मां कहती है चंद्र, वो जाता है उसकी मां के पास, वो कहता है मैं चंद्रगुप्त को लेने आया हूं, वो एकदम पकड़ लेती है, ये मेरा पुत्र है तुम कैसे लेने आए हो। वो कहता है तुम रोकोगी तो भी मैं उसे ले जाऊंगा, पर वो कहती है मेरा अधिकार इस पर पहला है। और चाणक्य कहता है परंतु तुम, वो पूछते तुम किस स्वार्थ से इसे लेने जाते हो, लेना चाहते हो। वो कहते हैं मेरे स्वार्थ के सामने तेरा स्वार्थ गौन है, तेरा स्वार्थ बहुत छोटा है, ये यहां रह जाएगा तो गैयों को चराएगा, मैं इसे ले जाऊंगा जाऊंगा तो ये मगध को राह दिखाएगा, इसलिए मैं इसे ले जाऊंगा। तो भगवान भी आया है, हमारे मां बाप को कहता है मुझे दे दो ये कन्या इसको इधर दे दो ये मेरे काम की है। और वो लेने आया है तो सद्गुरु क्या करता है, ले जाता है, राह दिखाता है। और क्या करता है सद्गुरु, अपनी गद्दी दे देता है जाते जाते। और क्या करता है, जन्म पत्री बता देता है। और क्या करता है, ताबीज, ताबीज सब नहीं देते, और क्या करता है, यज्ञ कराता है। और क्या करता है, अपने अपने जैसा ही गुरु बना देता है। और क्या करता है, शक्ति समुद्र समुत्त तरंगम, दर्शित प्रेम विजुंबित रंगम, संशय राक्ष नाश महस्त्रम, यामी गुरु शरणम भव वैद्यम। गुरु क्या है, भव वैद्य है। भव वैद्य अर्थात इस सारे भव सागर का, भव रोग का वो वैद्य है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, वैद्यनाथ वैजनाथ। वो जन जन की देह अभिमान की जो बीमारी है उससे छुड़ाता है। अद्वैय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम यामी गुरु शरणम भव वैद्य। ऐसे गुरु की शरण। तो बाबा सदगुरु है, आज क्या है, सद गुरु वार। तो सारे दिन भर क्या करते रहना है, उसको शुक्राना, उसको धन्यवाद कि तुमने आकर क्या क्या कर दिया, किस गर्त में पड़े थे, किस गटर में डूबे हुए थे। कई बार बाबा ने कहा है तुम्हारा क्या बचा था, केवल एक ही बाल, इतने डूब गए थे दलदल में कि बस एक ही बाल दिखाई दे रहा था, और मैंने आकर इस एक बाल से ही खींचा तुमको, इसलिए दर्द तो हुआ होगा पर जरूरी था, नहीं तो तुम डूब गए होते। तो वो गुरु आया है। जो अच्छे गुरु होते हैं, वास्तविक गुरु थे, वो तारीफ नहीं करते थे अपने शिष्यों की, वो अलग प्रकार के गुरु थे। जो जैन मास्टर जितने हैं, जितने दिखाए हैं, वो शिष्य आता था उनके पास कि मुझे शिक्षा दो, चलो ऊपर, दूसरी मंजिल पर लेके जाता था, नीचे देखो और धक्का देके फेंक देता था उसको। इस तरह से शिक्षा देते थे वो, हाथ पैर टूट गए उनकी जो मेथड से शिक्षा देने की, सब अलग है जितने वो जैन गुरु दिखाए हुए हैं। तो बाबा तो ऐसा नहीं करते पर बाबा के शब्दों के ही मान है, शब्दों की लाठी है उसकी, सूक्ष्म सूक्ष्म लाठी है। तो ऐसे गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये बहुत पावरफुल एक गीत है। शक्ति समुद्र समुत्थ तरंगम, दर्शित प्रेम विजंगी तरंगम, संशय राक्ष समास नाश महस्त्रम, यामी गुरु भव भय वैद्यम, नरदेव देव जय नरदेव देव। वो कहता है मेरा जो गुरु है वो कैसा है, शक्ति का जो समुद्र है उसकी एक तरंग है। मेरा जो गुरु कैसा है, दिव्य लीलाएं करता है। मेरा जो गुरु है संशय राक्षस नाश महस्त्रम, अस्त्र है वो किसके लिए, संशय रूपी राक्षस का नाश करने के लिए। आज की मुरली में तुमको कितना निश्चय है, कोई को है 100%, किसी को है 50, किसी को है 20, किसी को 10, पूरा निश्चय ही नहीं है, इसका मतलब याद नहीं कर रहे तो। संशय राक्षस नाश महस्त्रम, शक्ति समुद्र समुत्थ तरंगम, दर्शित प्रेम विजिंबी तरंगम, अद्वैत तत्व समाहित चित्तम। तुम्हारे मुख से जो निकल रहा है वो अद्वैत तत्व है, नॉन ड्वेलिस्टिक ट्रुथ, अर्थात संपूर्ण सत्य। ऐसी कोई संदिग्ध बात तुम्हारे मुख से निकल ही नहीं सकती। प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम, तुम्हारे जो वस्त्र है परमात्मा प्रेम के वस्त्र है। प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम, कर्म कलेवर अद्भुत चेष्टम, तुम्हारे जो कर्म है, जिस कलेवर से, जिस देह से तुम कर्म कर रहे हो, वो कर्म साधारण नहीं, सुपर ह्यूमन है। नर देव देव जय नर देव देव, ये गीत हमने सुना था। हजारों ब्रह्मचारी और सन्यासी एक साथ बैठे हुए थे, उसके बीच में ये गीत चल रहा था। बहुत शक्तिशाली गीत है, स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ अपने गुरु के लिए। आज बाबा ने रामकृष्ण परमहंस को भी याद किया, वो भी यहीं कहीं है, गिरे होंगे कहीं दूसरे जन्म में। तो गुरु की अथाह भक्ति का बहुत महत्व है। एक उदाहरण है कि जब रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया तो बहुत कफ निकलता था, बलगम, गंदा गंदा, और जो एक हमारी भाषा में सेवाधारी जो उनकी सेवा करता था वो थोड़ा सा लापरवाह था। तो दिखाया है कि जो नरेंद्रनाथ था, उसने जब ये देखा कि तो उन्होंने वो जो कटोरा था बलगम का भरा हुआ, वही पी लिया पूरा। तो संसार में भी गुरु के प्रति असीम भक्ति, असीम श्रद्धा, निश्चय का भाव रहा है। ये हमारा सद्गुरु है जो अब आया है। हमारा कैसा निश्चय है, कैसा प्यार है, क्या हम उसके लिए कर रहे हैं, कितना हमारा महत्व है। वो कहता है ये फरमान है, बड़ा फरमान, हमने क्या किया। वो कहता है ऐसे पवित्र बनो। कल रामायण में उदाहरण है, हनुमान जी पहुंचते हैं लंका और सीता से मुलाकात करते, देखते हैं सीता कितनी दुखी है, कैसी वो राक्षसिनी है, उसको तंग कर रही है। और फिर सूक्ष्म रूप धारण के वो आता है और वो मुद्रिका डालता है और फिर वो देखती है और उससे वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप में एक संवाद है, वो एक बात वो कहता है, उसका विरह देखकर कि मैं अभी तुमको श्री राम जी के पास ले चलता हूं, बैठो कंधों पर और ले चलता हूं तुमको। ये राक्षस जो है, कोई भी मेरा इतना शक्ति है कि कोई भी मेरे वेग को पार नहीं, मुझे नहीं रोक सकता। सीता क्या कहती है पता है, क्या कहती है, क्या कहती है, वो कहती है मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, स्वइच्छा से, मैं स्वइच्छा से पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम मुझे ले जा सकते हो, तुम इतने शक्तिशाली हो। एक बार तो किसी ने मुझे स्पर्श किया, परंतु मैं उस समय परवश थी, परंतु स्वइच्छा से मैं किसी को स्पर्श नहीं कर सकती। इसके लिए श्री राम को ही आने दो। आज की मुरली में भी कहा है, कोई विकारी हमें स्पर्श ना करे, अच्छा नहीं लगता है हमको, आज हाथ लगाए, बास है उनके स्पर्श में विकारों की। ऐसी अखंड पवित्रता, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य वो सद्गुरु सिखाने आया है। तो इसलिए क्या उसका सुख रहना, ओम शांति। तो अलर्ट होके बैठ के उसको फिर से दिल से, तहे दिल से, हार्दिक दिल की गहराई से, अंतर मन से धन्यवाद, थैंकफुल, शुक्राना। शुक्र।